नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा।
प्रेस रीसेट वीडियो गेम उद्योग पर पत्रकार जेसन श्रायर की खोज परक गैर कथा पुस्तक है। यह उन चमकदार खेलों के पीछे मौजूद अस्थिर कार्य जीवन को सामने रखती है जिन्हें खिलाड़ी आमतौर पर केवल अंतिम उत्पाद के रूप में देखते हैं। पुस्तक का केंद्र प्रश्न यह है कि सफल या चर्चित खेल बनाने वाले स्टूडियो भी अचानक क्यों बंद हो जाते हैं और उस निर्णय का डेवलपर्स, कलाकारों, डिजाइनरों तथा उनके परिवारों पर क्या असर पड़ता है। श्रेयर अनेक प्रत्यक्ष साक्षात्कारों के आधार पर स्टूडियो बंद होने, छटनी, प्रबंधन की गलतियों और कर्मचारियों के अगले कदमों का अध्ययन करते हैं। बायोशॉक इन्फिनिट, एपिक मिकी और डेड स्पेस जैसे चर्चित खेलों से जुड़े प्रसंग इस उद्योग की प्रतिष्ठा और उसकी रोजगार असुरक्षा के बीच का विरोधाभास दिखाते हैं। यह पुस्तक खेलों की समीक्षात्मक इतिहास कथा नहीं बल्कि व्यवसाय, श्रम और रचनात्मकता के टकराव का विश्लेषण है। इसका उद्देश्य किसी एक कंपनी को दोषी ठहराना नहीं बल्कि उन संरचनात्मक प्रोत्साहनों को समझना है जो असाधारण प्रतिभा के बावजूद टीमों को बार बार विघटन की ओर ले जाते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, हिट खेल के बाद भी स्टूडियो बंद होने का विरोधाभास। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि लोकप्रिय खेल, आलोचनात्मक प्रशंसा और प्रतिभाशाली टीम किसी स्टूडियो की निरंतरता की गारंटी नहीं है। खेल निर्माण में वर्षों का निवेश, बड़ी टीमें और विपणन खर्च शामिल होते हैं, इसलिए एक परियोजना की सफलता का अर्थ हमेशा स्थिर नकदी प्रवाह नहीं होता। प्रकाशक की बदलती रणनीति, अपेक्षाओं से कम बिक्री, स्वामित्व परिवर्तन या अगली परियोजना के लिए वित्त न मिलना सफल दिखने वाले संगठन को भी समाप्त कर सकता है। श्रायर इस विरोधाभास को उद्योग की परियोजना आधारित प्रकृति से जोड़ते हैं। खेल पूरा होने पर टीम की आवश्यकता घटती है जबकि अगला खेल स्वीकृत होने तक कर्मचारियों के वेतन और संसाधनों का खर्च बना रहता है। इसी अंतराल में प्रबंधन अक्सर छंटनी या बंदी का रास्ता चुनता है। बायोशॉक इन्फिनिट, एपिक मिकी और डेड स्पेस से जुड़े स्टूडियो प्रसंग यह स्पष्ट करते हैं कि सार्वजनिक प्रतिष्ठा और आंतरिक व्यावसायिक सुरक्षा अलग चीजें हैं। पाठक के लिए इसका अर्थ है कि किसी खेल के अंतिम क्रेडिट में दिखाई देने वाली बड़ी टीम को स्थायी संस्था मान लेना भ्रामक हो सकता है। पुस्तक सफलता की सामान्य परिभाषा को चुनौती देकर पूछती है कि यदि प्रशंसित काम बनाने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जोखिम वास्तव में कौन उठाता है। दूसरा, छंटनी का मानवीय और पेशेवर असर। प्रेस रीसेट स्टूडियो बंदी को केवल कॉरपोरेट समाचार नहीं मानती। इसका मुख्य ध्यान उन लोगों पर है जिनकी आय, पहचान और पेशेवर संबंध एक निर्णय के साथ टूट जाते हैं। खेल विकास में नौकरी पाने के लिए लोग अक्सर दूसरे शहर या देश जाते हैं, विशेष कौशल विकसित करते हैं और लंबे समय तक एक परियोजना में अपना समय लगाते हैं। बंदी के बाद उन्हें सीमित अवसरों वाले बाजार में फिर से काम ढूंढना पड़ सकता है, इसलिए नौकरी खोना केवल वेतन का नुकसान नहीं, स्थानांतरण, पारिवारिक दबाव और पेशेवर अनिश्चितता का संयुक्त संकट बनता है। पुस्तक विशेष रूप से इस असंतुलन को रेखांकित करती है कि निर्णय लेने वाले उच्च प्रबंधक और निवेशक अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकते हैं जबकि उत्पादन करने वाली टीम को तत्काल जोखिम झेलना पड़ता है। बकाया वेतन और अचानक समाप्त हुए अनुबंध जैसी स्थितियां इस असुरक्षा को और गंभीर बनाती हैं। श्रायर कर्मचारियों को निष्क्रिय पीड़ितों की तरह नहीं प्रस्तुत करते। वे नई टीमों में जाते हैं, स्वतंत्र परियोजनाएं शुरू करते हैं, दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं या उद्योग छोड़ देते हैं। फिर भी पुनर्प्राप्ति को सहज समाधान कहना गलत होगा। पुस्तक का मानवीय दृष्टिकोण दिखाता है कि हर नया अवसर पहले हुए व्यवधान की लागत को समाप्त नहीं करता।
तीसरा, MMORPG, इंडी और फ्री टू प्ले मॉडल के अलग जोखिम। पुस्तक खेल उद्योग की अस्थिरता को केवल खराब नेतृत्व का नतीजा नहीं बताती बल्कि बदलते व्यावसायिक मॉडलों से भी जोड़ती है। MMORPG मॉडल नियमित सदस्यता, आय का आकर्षक वादा करता था, लेकिन इस बाजार में बहुत कम खेल लंबे समय तक विशाल खिलाड़ी समुदाय बनाए रख पाते हैं। निर्माण और संचालन की लागत अधिक होने पर अपेक्षित सदस्य न मिलने का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। 38 स्टूडियोज का प्रसंग इस तरह की ऊंची महत्वाकांक्षा, वित्तीय दबाव और अचानक बंदी के खतरे को समझने में केंद्रीय है। इसके विपरीत, स्वप्रकाशित इंडी खेल निर्माता को वितरण और रचनात्मक नियंत्रण का अधिक अवसर दे सकते हैं। सफल खेल से लंबे समय तक आय भी संभव है, पर वित्तीय जोखिम सीधे छोटे दल पर आ जाता है और इस मॉडल से बड़े बजट वाले उत्पादन को संभालना कठिन हो सकता है। फ्री टू प्ले मॉडल व्यापक पहुंच देता है किंतु आय के लिए खिलाड़ियों को बार बार खर्च कराने की जरूरत डिजाइन निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। डंजन कीपर का मोबाइल रूपांतरण इस तनाव का जाना माना उदाहरण है। श्रायर किसी एक मॉडल को सार्वभौमिक उत्तर नहीं कहते। उनका निष्कर्ष यह है
कि हर मॉडल जोखिम को खत्म करने के बजाय उसे निवेशक, स्टूडियो और श्रमिकों के बीच अलग ढंग से बांटता है। चौथा, अपारदर्शी नेतृत्व और कॉरपोरेट निर्णयों की कीमत। श्रायर के विश्लेषण में प्रबंधन की भूमिका केवल बजट मंजूर करने तक सीमित नहीं है। नेतृत्व की प्राथमिकताएं तय करती हैं कि रचनात्मक टीम को कितना समय मिलेगा, किस प्रकार की परियोजना स्वीकार होगी और विफलता की कीमत कौन चुकाएगा। पुस्तक में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां अधिग्रहण, कॉरपोरेट पुनर्गठन, अवास्तविक समय सीमा या वरिष्ठ स्तर की आंतरिक राजनीति खेल बनाने वाले कर्मचारियों के नियंत्रण से बाहर होते हुए भी उनके भविष्य को प्रभावित करती है। इस व्यवस्था की समस्या सूचना के असमान वितरण में है। कर्मचारी किसी परियोजना पर वर्षों काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय स्थिति, निवेशक दबाव या बंदी की तैयारी की पूरी जानकारी नहीं मिलती। जब घोषणा होती है तब वैकल्पिक योजना बनाने का समय बहुत कम होता है। यह पारदर्शिता भरोसे को कमजोर करती है और प्रतिभा के पलायन को बढ़ा सकती है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि किसी स्टूडियो की पहचान अक्सर उसके संस्थापक या प्रसिद्ध रचनात्मक निर्देशक से जुड़ जाती है, जबकि परिणाम पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। इसलिए लेखक की आलोचना केवल व्यक्तिगत बुरे व्यवहार तक सीमित नहीं रहती, वह शासन संरचना पर प्रश्न उठाती है जहां निर्णय का अधिकार और निर्णय के जोखिम का भार एक ही लोगों के पास नहीं होता। यही अंतर खेल उद्योग में जवाबदेही और श्रम सुरक्षा की चर्चा को आवश्यक बनाता है। अंत में, पुनर्प्राप्ति का अर्थ नया अवसर भी है और उद्योग से बाहर निकलना भी, शीर्षक का रिकवरी भाग पुस्तक को केवल विफलताओं की सूची बनने से रोकता है। हालांकि इसका स्वर आसान आशावाद का नहीं है। श्रायर उन रास्तों पर ध्यान देते हैं जिनसे बंद स्टूडियो के कर्मचारी अपनी पेशेवर जिंदगी फिर से बनाते हैं। कुछ लोग नई कंपनियों में चले जाते हैं, कुछ पूर्व सहकर्मियों के साथ छोटे स्वतंत्र दल बनाते हैं और कुछ यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लगातार अस्थिरता के बाद खेल उद्योग छोड़ना बेहतर है। यह विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि पुनर्प्राप्ति की एक ही परिभाषा नहीं हो सकती। किसी के लिए नया खेल प्रकाशित करना सफलता है, किसी के लिए स्थिर आय और कम जोखिम वाला दूसरा तकनीकी क्षेत्र। एंटर द गंजियन बनाने वाली टीम का अनुभव छोटे स्वप्रकाशित विकास की संभावनाओं का उदाहरण देता है, पर पुस्तक उसे सभी के लिए दोहराया जा सकने वाला समाधान नहीं मानती। स्वतंत्रता अधिक नियंत्रण दे सकती है, लेकिन पूंजी, विपणन और असफलता का जोखिम भी रचनाकारों पर डालती है। इसीलिए पुस्तक का व्यावहारिक संदेश व्यक्तिगत दृढ़ता की प्रशंसा भर नहीं है, यह उद्योग की संस्थाओं से बेहतर योजना, पारदर्शिता और श्रमिक सुरक्षा की आवश्यकता पर विचार करने को कहती है। रिकवरी तब अधिक टिकाऊ होगी जब उसे केवल व्यक्ति की जिम्मेदारी न माना जाए। निष्कर्ष में, प्रेस रीसेट उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो वीडियो गेम खेलते हैं, खेल निर्माण में करियर पर विचार कर रहे हैं या रचनात्मक उद्योगों में रोजगार की अस्थिरता को समझना चाहते हैं। श्रम, मीडिया, तकनीक और कॉरपोरेट शासन में रुचि रखने वाले पाठकों को भी इसमें ठोस उदाहरण मिलते हैं। पुस्तक का लाभ यह है कि यह बंद स्टूडियो की खबरों को आंकड़ों या प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित नहीं रखती। यह दिखाती है कि व्यावसायिक निर्णय रोजमर्रा के जीवन, पेशेवर पहचान और रचनात्मक समुदायों को कैसे प्रभावित करते हैं। करियर चुनने वाले पाठक इससे उद्योग के जोखिमों, स्थानांतरण की संभावित लागत और परियोजना आधारित रोजगार की सीमाओं को अधिक यथार्थवादी ढंग से देख सकते हैं। अनुभवी पेशेवर इसके जरिए अपने अनुभवों को व्यापक संरचनात्मक संदर्भ में रख सकते हैं। खेलों के निर्माण पर केंद्रित पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उत्पादन के बाद बचे लोगों की स्थिति पर जोर देना है। जैसन श्रायर की पत्रकारिता इसे अंदरूनी पहुंच और मानवीय विवरण देती है, जबकि पुस्तक का व्यापक ढांचा व्यापार मॉडल, नेतृत्व और श्रम के संबंधों को जोड़ता है। कुछ पाठकों को अलग अलग स्टूडियो कथाओं का फैलाव भारी लग सकता है और शीर्षक के मुकाबले विनाश का भाग अधिक प्रभावी प्रतीत हो सकता है। फिर भी यही असुविधा पुस्तक की ईमानदारी है। यह पुनर्प्राप्ति को सुनिश्चित सुखांत नहीं, बल्कि अनिश्चित परिस्थितियों में किया गया कठिन पुनर्निर्माण मानती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, जेसन श्रायर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।